हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जून का महीना लगभग खत्म होने वाला था। आयुष्मान और प्रीति की शादी को एक साल पूरा होने में बस एक दिन बाकी था। अगले दिन उनकी एनिवर्सरी थी, जिसके लिए प्रीति और आयुष्मान अपने 6 महीने के बेटे आर्ष के साथ दिल्ली आए हुए थे। वे घर में परिवार के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले थे। आयुष्मान ऑफिस में पहले ही पार्टी दे चुका था और आज शाम को यहाँ आया था। बाकी सबकी जिंदगियाँ भी ठीक चल रही थीं। जसमीत की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए थे और फिलहाल सब ठीक था। दादी उनके साथ ही थीं। गुरमीत के अपने परिवार से सभी रिश्ते टूट चुके थे। कहीं ना कहीं बेटे और बहू के जाने के बाद हरलीन जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्होंने गुरमीत से कई बार बात करने की कोशिश की, पर ना गुरमीत उनसे बात करता था और ना ही जसमीत को बात करने देता था। दादी भी उनसे कम ही बात करती थीं। अपनी ईर्ष्या और लालच में उन्होंने खुद अपने घर की खुशियों को आग लगाया था। चाचा जी जिस प्रॉपर्टी के पीछे भागते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने सगे भाई से नफरत पाल ली थी, अपने भतीजे को उसके अधिकार से दूर रखने के लिए उसे उसके ही घर से निकाल दिया था, अब वही जमीन जायदाद उनसे संभाली नहीं जा रही थी। गुंजन और नूर तो गेहूं के साथ घुन जैसे पिस रही थीं, पर उनकी बात उनके दोनों भाइयों और भाभियों से हो जाती थी। प्रेम कहाँ था कोई नहीं जानता था, ना तो उससे किसी की बात हुई थी और ना ही मुलाकात। अवधेश जी के फैसले के बाद गरिमा जी ने दोबारा प्रेम, वर्षा या उनके बेटे से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। गरिमा जी के प्रति आयुष्मान की नाराजगी अब खत्म हो चुकी थी। आयुष्मान और प्रीति का रिश्ता इस नई जिम्मेदारी के साथ और मजबूत हो चुका था। अब उनका बेटा आर्ष 6 महीने का हो गया था। वो पहले से ज्यादा शैतान हो गया था। बोलने की कोशिश करते हुए आवाजें निकालने लगा था। शब्द नहीं कहता था वो अभी, पर घुटनों पर रेंगने लगा था। चीजों को उठाकर मुंह में डाल देता था। खिलौनों से खेलता था। इंसानों और चीजों को पहचानने लगा था। अब दूध के अलावा सेब की प्यूरी, दलिये की प्यूरी, मूंग दाल की खिचड़ी जैसी चीजें भी खिलाई जाने लगी थीं। आर्ष ने प्रीति का काम बढ़ा दिया था। अब प्रीति उसे बेड पर बिठाकर या सुलाकर जाने से डरती थी, क्योंकि वो एक बार उसे ढूंढते हुए घुटनों से चलकर बेड से नीचे गिर गया था। फर्श पर उसे बिठाती तो रेंगते हुए उसके पीछे पीछे चला आता। खाना खाते हुए बर्तन पर हाथ मार देता। नखरे दिखाकर प्रीति को अपने पीछे नचाता। पापा का लाडला पापा की बात मानता था। जब आयुष्मान साथ होता तभी प्रीति चैन से रह पाती थी, या फिर जब आर्ष सो जाता तब उसे सुकून आता। पेरेंट्स बनने के बाद उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए थे और अब दोनों ने खुद को उन बदलावों के अनुरूप ढाल लिया था। अब भी आयुष्मान का झुकाव ज्यादा आर्ष के तरफ था। कई बार आर्ष की तबीयत खराब होने पर आयुष्मान रात रात भर जागता था। उस वक्त आर्ष इतना चिड़चिड़ा हो जाता था कि आयुष्मान को छोड़ता ही नहीं था। इसलिए आयुष्मान को छुट्टी लेकर अपने बेटे को संभालना पड़ता था, पर आयुष्मान कभी शिकायत नहीं करता था। प्रीति और आर्ष के लिए जो भी वो कर सकता था सब कर रहा था और तीनों साथ में काफी खुश थे। आज ही दोनों शाम को दिल्ली पहुंचे थे और डिनर के बाद कुछ देर बातें करने के बाद आराम करने चले गए थे। जब तक प्रीति कपड़े बदल कर आई, आयुष्मान आर्ष को सुला चुका था और उसके बगल में बैठा उसके सर पर प्यार से थपकी दे रहा था। प्रीति बेड के दूसरे साइड आकर बैठ गई और खामोशी से दोनों को देखने लगी। ऐसा नहीं था कि आयुष्मान से कुछ छुपा था या वो इस बात से अनजान था। उसको भी एहसास था प्रीति की निगाहों के खुद पर टिके होने का। कुछ देर तक तो उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, पर जब कुछ देर बाद भी उसे प्रीति की निगाहों के खुद पर टिके होने का एहसास हुआ तो उसने निगाहें प्रीति की तरफ घुमाई और बौहें उठाते हुए सवाल किया, क्या हुआ प्रीति, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? बस आपको देखते हुए सोच रही हूँ कि कितनी लकी हूँ मैं जो मुझे हमसफर के रूप में आप मिले। आपने मुझे उस वक्त अपनाया जब मेरा खुद का परिवार और मेरे माँ बाप मुझे ठुकराकर खुद से दूर कर चुके थे। आपने मेरे साथ साथ मेरे अतीत और अतीत से जुड़ी इस निशानी को भी दिल से अपनाया। प्रीति ने आर्ष की तरफ इशारा किया, फिर आगे कहना शुरू किया, आपने मेरे बारे में सब जानते हुए ना सिर्फ मुझसे शादी की बल्कि वो सभी अधिकार दिए जो आपकी पत्नी के नाते मुझे मिलने चाहिए थे। मेरी बेरुखी सहकर भी बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया, मोहब्बत के साथ मुझे इज्जत भी दी। ना सिर्फ मेरे बच्चे को अपनाकर उसे अपना नाम दिया बल्कि उसे इतना प्यार भी करते हैं, मेरा और हमारे बेटे का खुद से ज्यादा ख्याल रखते हैं। मेरे जिन पंखों को मेरे माता पिता ने काट दिया था उन्हें आपने फिर से उड़ान दी। मेरे सपने को पूरा करने में मेरा साथ दिया, हमेशा मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़े रहे। जब जब मैं कमजोर पड़ी मेरी ताकत बनकर आपने मुझे बिखरने से बचाया। जब जब मेरा खुद पर विश्वास डगमगाया आपने मुझ पर अटूट विश्वास करके मुझे खुद पर विश्वास करने की वजह दी। मैं तो खुद को ही खो चुकी थी, पर आप मेरी जिंदगी में आए और मेरी बिखरी जिंदगी को संवारा, मुझे फिर से मेरे खुद के वजूद से मिलाया, मुझे मेरी अपनी एक अलग पहचान दी, मुझे सर उठाकर चलने के काबिल बनाया। शायद ही दुनिया में इतना लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव पति होता हो, और अगर होते भी होंगे तो उनकी संख्या ना के बराबर होगी। और मैं उन चंद खुशकिस्मत लड़कियों में से एक हूँ जिसे आप जैसे आइडियल हस्बैंड मिला है। इसके लिए मैं जितनी बार भगवान को शुक्रिया करूँ उतना कम है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी जो उन्होंने आपको मेरी जिंदगी में पति के रूप में भेजा। प्रीति के मन में शायद और भी कई बातें थीं जो वो आयुष्मान से कहना चाहती थी, पर वो इतना कहकर ही खामोश हो गई और लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए उसे देखने लगी। सच में आज उसके लबों पर सच्ची मुस्कान काबिज थी, जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं थी। आज उसके चेहरे पर दुख, दर्द, पीड़ा का नामो निशान तक नहीं नजर आ रहा था। आज उसके मायूस से चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सुकून और खुशी छलक रही थी, जिसकी वजह आयुष्मान, उसका साथ और उसका अनकंडीशनल प्यार ही था। प्रीति की बातें उनके अब तक के सफर और प्रीति के दर्द को बयां कर रही थीं, जो उसने सहा था। साथ ही भगवान के प्रति उसकी कृतज्ञता भी दर्शा रही थी, जो उन्होंने आयुष्मान को उसकी जिंदगी में भेजा था। प्रीति की बातें सुनकर आयुष्मान कुछ भावुक हो गया और प्रीति को प्यार भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर बोला, इस हिसाब से तो मैं तुमसे ज्यादा लकी हुआ, क्योंकि मुझे हमसफर के रूप में वो मिली जिसे मैंने चाहा था पर पाने की उम्मीद तक छोड़ चुका था। मैं तुमसे ज्यादा खुशनसीब हुआ जो मुझे पत्नी के रूप में वो लड़की मिली जिसने मेरी सूनी जिंदगी में शामिल होकर उसे खुशियों के अनेकों रंगों से सजा दिया।